ओम शांति। बाबा हमेशा हम बच्चों को एक बात याद दिलाते हैं कि तुम किसके बच्चे हो, स्वयं परमपिता परमात्मा। तो नेचुरली बहुत नशा चढ़ जाता है कि हम स्वयं भगवान के बच्चे। और फिर बाबा ये भी याद दिलाता है कि बच्चे तुम कहां बैठे हो, तो गॉडली यूनिवर्सिटी में। तो गॉडली यूनिवर्सिटी में मतलब हमारा टीचर कौन है। तो ऐसी ऐसी बातों से बहुत नशा चढ़ जाता है, लेकिन बाबा में रोज की साकार मुरली में हमारी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स भी याद दिलाता है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों ही सब्जेक्ट बैलेंस में हो। तो बाबा कहते जो पास विद ऑनर होना है तो चारों ही सब्जेक्ट में बहुत अटेंशन देना पड़ता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में चलते चलते सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है सेवा का। ब्राह्मणों को सेवा में बहुत अट्रैक्शन है, कैसी भी सेवा हो। तो हम इतने मस्त हो जाते हैं सेवा में, लेकिन धीरे धीरे योग के सब्जेक्ट में थोड़ा प्रायोरिटी कम हो जाती है। और सेवा और ज्ञान ये दो में जास्ती अटेंशन रहता है, क्योंकि सेवा के लिए ज्ञान का मंथन बहुत जरूरी है और इसलिए उसके ऊपर अटेंशन है। धारणा है, लेकिन धारणा में भी थोड़े परसेंटेज आ जाते हैं। और योग के सब्जेक्ट में तो बहुत बहुत कम बाबा के बच्चे अटेंशन देते हैं। तो अफ्रीका में जो हमारी सेवा चल रही है, वो सेवा का फाउंडेशन हम पे हमेशा अटेंशन रखते हैं कि सेवा का फाउंडेशन है योग। सबसे पहले योग का अटेंशन चाहिए और दूसरा धारणा। जो मैं सुनाऊंगी, जो मैं सेवा करूंगी, उसका कितने परसेंटेज में मैंने धारण किया है। कोई भी अभी 100% तो नहीं है, लेकिन उसका अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। तो ये साल की जब शुरुआत हुई तो हम लोगों ने एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाया था नैरोबी में, पूरे अफ्रीका में, लेकिन बना नैरोबी में और पूरे अफ्रीका में हम लोगों ने फिर वो संदेश भेजा। तो वो प्रोग्राम था योग का, मई से शुरू किया और सितंबर के एंड तक हमने पूरा किया। मतलब योग तो कभी पूरा होता ही नहीं है, लेकिन विशेष अलग अलग प्रोग्राम्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो ही ब्राह्मणों को थोड़ा उत्साह रहता है। समय प्रति समय ब्राह्मणों के उमंग और उत्साह को कायम रखने के लिए हमें कुछ नवीनता लानी है। तो 1 मई से हमने ये प्रोग्राम रखा 30 सितंबर तक। तो उस प्रोग्राम का नाम था द एंजल ऑफ द डे, आज के दिवस का फरिश्ता। और उसमें हम लोगों ने चार्ट बनाए थे, उसमें डेट्स लिखी थी, नाम डे और डेट। हर एक को बताया गया था कि एटलीस्ट आप रोज करो या न करो, लेकिन 5 मास में एक बार जरूर करो। एक बार तो करना ही है, फिर किसी को 2 बार, किसी को 5 बार, जितना करना है भले करे, लेकिन एक बार तो डेफिनेटली करना है। उसमें क्या करना है कि आप अपने आप को ऐसे मेंटली तैयार करो कि जो बाबा 8 घंटा योग तपस्या की बात करता है, तो एक दिन में मुझे 8 घंटा योग करना है। उसमें कोई भी स्ट्रिक्ट चीज नहीं है कि साइलेंस ही रखना है, यही करना है। आप सुबह से रात तक 8 घंटा पूरा करो, 8 आवर्स योग करो। बीच बीच में आपको कारोबार करना है, कोर्स कराना है, क्लासेस करना है, भोजन बनाना है, शॉपिंग जाना है, जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन अमृत वेले से रात तक में आपको 8 आवर्स करना है और वो रियली बैठ के तपस्या योग करना है। और उसमें लक्ष्य 3 चीज का हो। एक, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, जो हुआ सो उसको जाने दो, छोड़ो, उसको पकड़ करके नहीं बैठो। और मैं अभी नाव में हूं, मतलब अभी के समय का अटेंशन दो, अभी मुझे क्या करना है। तो नाव। और तीसरी बात कि भविष्य में मेरा क्या विजन है, भविष्य के लिए जी मुझे क्या देखना है। भविष्य भी तरह तरह का है, भविष्य की सेवा क्या करनी है, अपनी स्टेज क्या बनानी है, यू नो, प्रोग्रेस क्या करना है परिवार का, कई चीजें हैं भविष्य में, तो उसका भी विजन देखना है। और भविष्य में नेचुरली सतयुग तो है ही है, लेकिन ये 3 बातों का अटेंशन रखना और 8 घंटे का योग करना, जो आपने वो 8 घंटा पूरा किया तो आप आपका नाम लिस्ट में दे सकते हो कि मैं ये दिन का फरिश्ता हूं। साइलेंस, मौन, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत सेंटर्स अफ्रीका में है जहां एक एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। नेचुरली फोन भी आंसर करना पड़ेगा और खाना भी बनाना पड़े और कोर्स भी करना पड़े, कोई कोई तो जॉब भी करते हैं, बहुत कुछ है। तो ये हम नहीं कह सकते कि सब कारोबार छोड़ दो, लेकिन बीच बीच में समय निकालो। तो जब मैंने अपने आप से संकल्प किया तो पहला संकल्प मेरा ये था कि मैं 5 मास में एक बार करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। तो मई की शुरुआत में हमने किया, 3 मई को। मुझे ये लगता था इतना कारोबार है, इतने प्रोग्राम्स है, बाहर भी जाना है, मेहमान भी इतने हैं, तो कैसे होगा, इसलिए एक बार मैं कर लेती हूं। लेकिन जब हमने पहला एंजल ऑफ द डे का संकल्प किया मई में, तो आप मानेंगे नहीं कि इतना अच्छा अनुभव। मैं तो समझती हूं कि जब हम 8 घंटा तपस्या का निकालते हैं तो दिन बहुत सहज हो जाता है। तो हमने क्या किया, अमृत वेला वहां हमारे पास तो 3 बजे होता है, लेकिन क्योंकि हमारा सब कुछ अर्ली है बहुत, लेकिन हमने 2 o'clock शुरू कर दिया। तो 2 to 3, 3 to 4 तो हो गया, फिर थोड़ा रेडी होके आधा घंटा क्लास का योग कर लिया, और फिर क्लास के बाद आधा घंटा कर लिया, और फिर कारोबार पूरा करके थोड़ा फिर मिड मॉर्निंग में कर लिया। तो ऐसे करते रात को 9 बजे तक हमारे 8 आवर्स आराम से हो गए। कोई भी स्ट्रेस नहीं कि मुझे इतना करना है, कुछ भी नहीं। और इतनी अच्छी तरह से वो तपस्या रही कि जैसे मैं आपको बहुत भौतिक रूप से बताऊ ना, लौकिक लाइफ से, तो टेबल पर बैठे हैं, कोई आपको कहेगा ये खाओ अच्छा है, ट्राई करो, आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे को तो नहीं ट्राई करना है। नहीं, करो ना, थोड़ा करो, खाली चखो। थोड़ा चखा, बहुत अच्छा लगा, फिर आपको लगे अभी थोड़ा और ले लूं, फिर और लूं, फिर अच्छी तरह से खा ही लूं। मैं आपको बताऊं, 8 घंटे तपस्या की ऐसा अनुभव था हमारा। तो हम डेफिनेटली हम ट्रैवलिंग भी बहुत करते हैं, ट्रैवलिंग में भी बहुत मतलब कारोबार रहता है, लेकिन फिर भी मैंने अंदर से कहा नहीं, मई की शुरुआत में किया ना, अभी एंड में भी कर लेती हूँ एक दिन। हा? तो ऐसे करते करते वन मंथ में वन टाइम, फिर 5 मास में एक एक मंथ, फिर नहीं नहीं थोड़ा एक दिन और भी ऐड कर दूं, ऐसे करते इतनी लगन लग गई। पहली बार मुझे थोड़ा संकल्प आया, 8 घंटा कैसे होगा इतने कारोबार में, लेकिन ऐसा हो गया कि पूरा 5 मास का अटेंशन बहुत रहा। 5 मंथ्स हमने 8-8 आवर्स बहुत नहीं किए, लेकिन मंथ में 1-2 बार हो जाता था, तो उसमें इतना मतलब उमंग बढ़ गया कि हमारा जो साल का फाउंडेशन है, सेवा का फाउंडेशन है, पुरुषार्थ का फाउंडेशन है, वो तपस्या है। और इतना तो मैं समझती हूँ सबने अनुभव किया होगा कि जो ऐसे ही सेवा के फील्ड में जाओ ना, तो आपको बहुत समय, श्वास, बहुत कुछ संकल्प बहुत यूज करना पड़ता है। जो हमारा संगम युग का इतना इम्पोर्टेंट खजाना है उसको एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है। लौकिक दुनिया में कहां भी दुकान में जाते हैं, प्राइस देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, कहते हैं कि हाँ क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइस भी बहुत है। चलो कहां कोई कम प्राइस वाला थोड़ा मिल जावे, तो 10 रुपए का भी हम हिसाब करते हैं, 100 का भी करते हैं, 10 का भी करते हैं, 2 का भी करते हैं कि चलो ये दुकान में 2 रुपए कम है तो वहां से लेवे। तो भौतिक धन बचाने में कितना हमारा अटेंशन रहता है, लेकिन जो संगम युग का हमारा खजाना है, समय, श्वास, संकल्प, संबंध, बहुत कुछ है, उसका अटेंशन कितना रहता है। तो समय भी हमारा बहुत व्यर्थ कभी चला जाता है, और सोचते भी बहुत है, करे ना करे, कैसे करे, क्या करे, उसमें बहुत सोच चलता है, कभी कभी संबंध भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हमारा खजाना बहुत वेस्ट होता है। तो हमने देखा कि द अदर वे राउंड, आप सब्जेक्ट को यूज करो ना कि सेवा पहले नहीं लेकिन तपस्या पहले, फिर धारणा, फिर ज्ञान और फिर सेवा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमारी अपनी स्थिति से, हमारी अपनी लाइफस्टाइल से ऑटोमेटिक सेवा होएगी, करनी है ऐसे नहीं, प्रोग्राम्स भी बनाने हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छा निकलता है। तो वो हमने देखा। दूसरा कि ये तपस्या का प्रोग्राम हम लोगों ने इसलिए बनाया कि हर एक कंट्री में आजकल कोई ना कोई इश्यू तो है, कहां अर्थक्वेक है तो कहां नेचुरल कैलेमिटीज है तो कहां वॉर है, कुछ ना कुछ है। तो हमारे पास केन्या में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा था, तो सबका कहना ये था कि 10 साल पहले जो इलेक्शन था उसका रिजल्ट बहुत खराब था, एक्सट्रीम ब्लड शेड, और बहुत जैसे दुनिया में एक हिस्ट्री बन गई और देश बहुत पीछे चला जाता है, तो लोगों को अंदर से बहुत डर है कि क्या होगा क्या होगा। तो 10 साल पहले तो वहां इतना लड़ाई झगड़ा खून मारामारी था कि बहुत लोग घर बार बिगड़ के हो गए थे, लेकिन 5 साल पहले जो हमारा इलेक्शन था प्रेसिडेंशियल, तो हम लोग मधुबन में थे और दादी जानकी के साथ पूरा अफ्रीका बैठा था, तो वेदांती बेन को संकल्प आया कि दादी हमको कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना है कि लोगों की बुद्धि, थोड़ा उनका विचार परिवर्तन करना है। लोगों को बहुत डर है कि ये इलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो हम समझते हम कोई प्रोजेक्ट करें। तो हम लोगों ने राइट टू गॉड का प्रोजेक्ट किया कि भगवान को पत्र लिखो, जो अर्जी है भगवान को लिखो, गवर्नमेंट सुनती नहीं है, धर्म नेताएं धर्म के बड़े भी नहीं सुनते, तो मतलब एक एक मनुष्य तो पूरे देश में हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट की धूम मचा ली। और मैं आपको बताऊं कि हमारी केन्या की हिस्ट्री में वो प्रोजेक्ट में जो हमको मीडिया का सपोर्ट मिला, इतना हाईएस्ट कवरेज मिला कि और कोई प्रोग्राम में ऐसा कवरेज हमको नहीं मिला था। और जो प्रेसिडेंट है उसकी वाइफ भी खास वो प्रोजेक्ट के कनेक्शन से बाबा के घर में आई, मार्गरेट केन्याटा। तो प्रोजेक्ट बहुत, और कई संस्थाओं ने उसके लिए प्रेयर्स और बहुत कुछ किया था कि पीसफुल इलेक्शंस जावे, और काफी पीसफुल गया। तो अभी 5 साल के बाद फिर इलेक्शंस था, तो इसलिए हम लोगों ने ये योग भट्टी रखी थी। और कईयों को हमने ये 8 घंटे का बताया, कईयों को बताया, और खास कि इलेक्शन पीसफुली चला जावे। इलेक्शन तो हो गया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, ब्लडशेड नहीं हुआ, मारामारी नहीं हुई, लेकिन सक्सेस भी नहीं हुआ। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि केन्या का इलेक्शन सक्सेसफुल नहीं किया है, बहुत चीटिंग हुआ है, तो अभी री इलेक्शन होगा। तो री इलेक्शन परसों है, 26 अक्टूबर को है। तो उससे पहले हम मधु बना रहे थे 1 अक्टूबर को, तो अगले दिन ब्रह्मा भोजन था, तो भाइयों ने थोड़ा स्ट्रिक्टली हम लोगों को बोला, वेदांती बेन को मुझे, कि आप लोग मधुबन तो साल में 2 बार जाते हो, लेकिन अभी इतना नाजुक समय देश में है और आप लोग मधुबन जा रहे हो, तो प्लीज आप यहां का भी सोचो कि बहुत बहुत नाजुक टाइम है और बहुत सेवा की जरूरत है और योगदान की जरूरत है। तो वेदांती बेन ने कहा अच्छा तो बोलो आपको क्या चाहिए, तो बोला आप मधुबन नहीं जाओ। मैं तो थोड़ी वो क्वेश्चन मार्क में आ गई, मधुबन कैसे नहीं जावे, यहां हम लोगों ने कमिटमेंट दे दिया है सेवा का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मीटिंग्स है, बहुत कारोबार है। वेदांती बेन ने इतना शांति से वो भाई को बोला अच्छा कल सुबह हमारी फ्लाइट है, अभी हमारे पास पूरा दिन है, आप मेरे को बताओ क्या करना है, मैं नहीं जाऊं। तो बोला नहीं आप दोनों नहीं जाऊं। तो बोला मैं प्रतिभा बेन के लिए नहीं बोल सकती हूं लेकिन मेरे लिए बोल सकती हूं। तो वो भाई ने शाम तक मंथन किया। मंथन में सार ये था कि जो इलेक्शंस के लीडर्स, मतलब ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी ये सब है ना, मैं समझती हूं सब जगह ऐसा होगा कि कोई आम व्यक्ति दंगा फसाद के कुछ नहीं करता है, धमाल भी नहीं करता, मारामारी भी नहीं करता, लेकिन कराया जाता है। तो ऐसे ग्रुप्स बने हुए होते हैं यूथ के, जिसको रॉन्ग डायरेक्शन दे करके, हायर करके कंट्री में धमाल करते हैं। तो वो भाई ने कहा ऐसे ग्रुप्स को हम इनवाइट करें, हम पकड़े, वो हायर कर लेवे, उससे पहले उनको थोड़ा हम समझ देवे, उनको गाइडेंस देवे कि पीस कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसे ऐसे लोगों को मैं सेंटर में लाऊंगा, ऑपोजिशन वालों को, यूथ को, जो भी हो मतलब, और रिलीजियस लीडर्स को। तो ऐसे करते, तो बोला 1 वीक हमको दो रेडी करने के लिए। तो वो भाई ने ही अपने आप बोला कि वेदांती बेन आप मधुबन जाओ, प्रेपरेशन तो हम करेंगे, आप क्या करेंगे प्रेपरेशन, आप आ जाओ टाइम पर, आप आपका पूरा करके आओ सेवा और फिर हम लोग यहां करें। और मेरे को तो यहां ही रहना था, तो वेदांती बेन 1 वीक यहां सेवा करके 10 दिन और वो वापस चली गई। और प्लान ऐसा बना कि बाबा का जो घर है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो आंगन है कोर्टयार्ड ड्राइववे, तो वहां पर हम लोगों ने एक बहुत बड़ी माकी बनाई, टेंट बनाई बहुत बड़ी, और उसमें जैसे हवन कुंड जैसा होता है ना, ऐसे सैक्रिफिशियल फायर बनाया और ग्रुप ग्रुप्स को इनवाइट किया। कोई 100 का ग्रुप है तो कोई 500 का ग्रुप है, तो कोई 15-20 का है, कोई हर्जा नहीं, नंबर से कोई नहीं है, लेकिन दिन में 5 ग्रुप 10 ग्रुप ऐसे ग्रुप्स को बुलाया और वो ग्रुप्स को कोई भी बहन या भाई थोड़ा गाइडेंस देते हैं कि पीस क्या चीज है, शांति से कुछ काम लेने में क्या फायदा है, और क्रोध करना, अशांति फैलाना, उससे क्या नुकसानी है। मतलब थोड़ा उनको पॉजिटिव डायरेक्शन दिया और उमंग उत्साह दिया और फिर उन्होंने प्रॉमिस करवाई और वो प्रॉमिस पेपर वो हवन कुंड में डालो कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, और फिर उनको थोड़ा मेडिटेशन में बिठाते हैं और अनुभव कराते हैं कि शांति की शक्ति कितनी पावरफुल है। आप मानेंगे नहीं, 1 वीक का प्रोग्राम था, 11 से मैं समझती हूँ 11 तारीख से 15 या 17 तारीख तक ऐसा कुछ था। तो इतना अच्छा मतलब प्रोग्राम चलने लगा और इतनी संस्थाओं के लोग आने लगे और ग्रुप्स लाने लगे, उसमें पॉलिटिशियंस भी आने लगे, ऑपोजिशन भी आने लगा, यूथ भी आने लगे, जो स्लम्स के है ना झुप्पड़पट्टी के, तो वो भी सब आने लगे। तो इतने लोग आने लगे और इतनी संस्थाएं, बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम पिकअप हो गया। कोई कोई कहते कि हम ला नहीं सकते हैं, लेकिन आप हमारे पास आओ तो भले हम जाएंगे वहां, हम यज्ञ कुंड वहां बना लेंगे। यज्ञ कुंड मतलब कोई कुंड बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन महायज्ञ में आप स्वाहा करो संकल्प से। तो ऐसे करते करते 11 और 17 के बीच में जो ऑपोजिशन है ना, उन्होंने इंटरनेशनली अनाउंस किया कि मुझे ये री इलेक्शंस में खड़ा नहीं रहना है। जो पावरफुल ऑपोजिशन है, जो बहुत पॉलिटिकल पावरफुल बैकग्राउंड से है, कि मुझे नहीं खड़ा रहना है, और तो सब छोटे छोटे हैं, वो तो ऐसे ही डिसॉल्व हो जाएंगे। और जो रूलिंग पार्टी है अभी, उसको किसके साथ कंपटीशन करना है, तो वो घड़ी घड़ी बोलता है रूलिंग पार्टी कि नहीं मैं इसको जाने नहीं दूंगा, लेकिन ये बोलता है कि मैं करूंगा ही नहीं। जो अच्छी तरह से शांति से हो तो इलेक्शन करे, री इलेक्शन करे, जो वही फिर होने वाला है रिपीट तो क्यों करे। तो देखो वाइब्रेशन कैसे पहुंच गए, तो ऑपोजिशन वाला तो हट ही गया। अभी देखना है कि 26 को क्या हो, जो भी होगा बेस्ट होगा। कहने का भावार्थ ये है कि सेवा का जो आउटकम है, रिजल्ट है, तो जो 5 मंथ का योग तपस्या का जो प्रोग्राम चला, तो बाबा किसी को भी निमित्त बना लेता है। ये भाई को इतना जोश आ गया कि आप लोग खरी टाइम पर कहां जा रहे हो, यहां रहो और हम ये करेंगे वो करेंगे, और ये सेवाएं हो गई। इतनी अच्छी सेवा, क्वालिटी सेवा। मैं तो कहती हूं कि मेरे को नियरली 40 इयर्स वो सेंटर में हुए, नॉट दैट बिल्डिंग, लेकिन वो गांव में 40 साल वो सेंटर में हुए, लेकिन ये क्वालिटी की सेवा हमने कभी देखी नहीं है। मैं तो यहां थी, लेकिन जो सुना और मैंने फोटोग्राफ्स देखे, वीडियोस देखे, उससे मैं कह सकती हूं कि इस क्वालिटी की सेवा, उसका जन्म कहां से हुआ, तपस्या से, योग से। अभी यही क्वालिटी की सेवा जो हम रिवर्स प्लान करें, तो विचारों में, प्लानिंग में, फिर कहेंगे पैसा कहां से आएगा, बजट कहां से आएगा, ये वो हैंड्स कहां से आएंगे, उसमें ही हम स्टक हो जाते हैं और हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है। लेकिन वो एनर्जी को हम तपस्या में यूज करें, तो वो तपस्या हमको इतना अच्छा मॉडल बना के देगी और वो सेवा बहुत पॉजिटिवली होगी। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। फॉरेन में कई सेंटर्स भाई लोग चलाते हैं, अफ्रीका में भी हमारे पास भाई टीचर्स काफी है। अफ्रीका एक बहुत सुंदर फील्ड है, कोई ये नहीं कह सकता कि वहां गरीबी और प्रॉब्लम्स और चोरी चपाटी है, कंफर्टेबल भी है, रहना है तो राजाई के रूप से भी रहो और हार्डशिप देखनी है तो भी देख सकते हो, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के फील्ड है। तो कई सेंटर्स में हमारे भाई है, पूरा साल तो वो चला लेते हैं सेंटर, लेकिन साल में एक बार कोई बहन को वहां जाना पड़ता है और वो है रक्षाबंधन पर। भाई लोग रक्षाबंधन तो नहीं करेंगे, तो नेचुरली हम लोगों को जाना है। और इतने सेंटर्स और इतनी कंट्रीज है और फील्ड एक्सपेंसिव भी बहुत है, ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक बहन जो चक्कर पे जाएगी तो हमारी राखी है ना जून जुलाई में शुरू हो जाती है जुलाई में तो अवश्य शुरू हो जाती है और चलती है राखी सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि एक दिन पे तो सब जगह नहीं पहुंचेंगे। तो जहां भी जाएंगे तो एक दिन के लिए नहीं भी जाएंगे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव ट्रैवल है। तो हम जाते हैं तो एटलीस्ट हम टाइम देते हैं। तो इस बार मेरा राखी का 2 मंथ्स का चक्कर था खाली राखी नहीं, लेकिन राखी के साथ फिर बहुत प्रोग्राम्स रहते हैं। एक बहुत एक सुंदर पॉइंट पे मैं आपको सुनाऊं कि वो 2 मास में मैं जब चक्कर लगाने जा रही थी तो रक्षाबंधन तो मेन था, इंग्लिश प्रोग्राम भी होता है, हिंदी प्रोग्राम भी होता है, मंदिर में भी होता है, इंडियन हाई कमीशन में भी होता है, बहुत जगह पर राखी का होता है। मैं बाबा के रूम में गई और हमने छुट्टी ली बाबा से, तो मैंने कहा बाबा ये ट्रिप का मैं टाइटल क्या रखूं, पूरी ट्रिप का 2 मंथ्स की ट्रिप का टाइटल क्या रखूं। तो हमने टाइटल रखा, मतलब वो मेरा फोकस रहा, पालना, सस्टेनेंस। क्योंकि क्या है कि देश इतने दूर दूर है कि वहां उनको पालना इतनी मिलती नहीं है, अपने आप ही पालना करनी पड़ती है। तो मैंने कहा ये ट्रिप में मैं जहां भी जाऊंगी ना सब जगह नए टीचर्स थे, बहुत नए, कोई 2 साल पुराने, कोई 4 साल से टीचर है, तो ऐसे। और मैं अपने आप को कंपेयर करूं तो मैं 40 साल, आप विचार करो हम लोगों को तो कितनी पालना मिली है, मधुबन से, दादी दीदियों से, बाप दादा से, बड़ी बहनों से, भाइयों से, अब टोली से, ब्रह्मा भोजन से, बहुत पालना मिली। तो दादी जानकी का कहना यही है कि अभी की जो रचना है उनको पालना नहीं है, आप लोग पालना दो, उनको बहुत डायरेक्शन नहीं दो। तो हमारा तो थोड़ा संस्कार तो है डायरेक्शन देने का, मतलब डायरेक्शन में ऐसे नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं कर सकते, तो थोड़ा तो है संस्कार। तो हमने अपने आप से कहा कि इस बार ओनली पालना। मैं गई, जब आप संकल्प करो ना तो ड्रामा और बाबा की अनन्य बच्ची, आप समझ गए कौन, माया, वो हमारी थोड़ी टेस्ट तो लेती है। तो मैं जब गई तो सेंटर भी सब नए नए है, इतने पुराने थोड़ी है, तो आप देखो ना तो आपको बहुत कमी दिखाई पड़ती है कि बाबा के घर में ऐसा नहीं होता है, बाबा के घर में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमने अपने आप को इतना ट्रेन किया कि बस आप पालना के लिए जा रहे हो, पालना में सबसे पहले किसी को करेक्शन नहीं देना है, वो जो कर सकता है, जो यथाशक्ति करता है, उसको बस चलाओ, खुशी से चलाओ और सख्त प्रेम दो, करेक्शन नहीं। और हमारा तो है थोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अलग देखा सेंटर लाइफ और अभी की लाइफ बहुत अलग है। तो मैं गई, वो बहन के साथ में कभी ऐसे रही नहीं हूं सेंटर में, वो सेंटर में रहने आई स्टूडेंट के रूप से तो मैंने उसको बहुत जाना है, लेकिन सेंटर में रहने के बाद, टीचर बनी उसके बाद मैं पहली बार गई।
तो फर्क है ना। तो अभी मैं गई तो मैंने देखा उसने प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाया, जैसा भी बनाया हो, लोकल है वहां की अफ्रीकन सिस्टर, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो हम इतना उसकी महिमा की, इतनी महिमा की, क्योंकि उसको जो आता है उसने बनाया और प्यार से ब्रह्मा मतलब बाबा को भोग लगाया, हमको दिया, सर्व किया। तो मैंने बहुत महिमा की, और नहीं रियली अच्छा ही था, बहुत अच्छा था। आप जो यहाँ के हिसाब से एक्सपेक्ट करो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से बहुत अच्छा। तो ऐसे करते करते मैंने देखा कि वहां फॉरेन में दूसरी एक बात ये है कि लोग बहुत बॉडी के हेल्थ कॉन्शियस है, नॉट बॉडी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस। मैं वीट नहीं खाती हूँ, मैं दूध नहीं खाती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ, मैं वो नहीं करती हूँ, चिली नहीं खाती हूँ, ऐसा बहुत है। तो ये बहन है ना, और जेन्युइन है, कोई गलत नहीं है। ये बहन जो गेहूं खावे ना तो उसको बहुत रिएक्शन हो जाता है, भूल से भी थोड़ा खा लिया तो भूल से इतना बैड स्टेज हो जाता है, तो बिचारी को कुछ खाना बनाना नहीं आता है। भोग भी दो तीन चीज बनानी आती है, हलवा बनाना आता है, सेवियां बनाना आता है थोड़ा, बस दो तीन चीज आती है, और केक और पुडिंग आता है। हर वीक भोग वही चलता रहता है, वही चलता। बेचारे स्टूडेंट भी वो खा खा करके भोग की भावना को गुम कर देते हैं, और वो भी बिचारी जो बाबा की याद में बनाना है ना, उसके बदले उसको यही लगता कि बस मैं यही खिलाती रहती हूँ, बाबा को भी यही खिलाती हूँ, बाबा के बच्चों को भी, आता नहीं है ना कुछ भी, और खाना भी वही। तो खा धारणा पक्की, लेकिन पतले पतले कुछ भी शक्ति नहीं है, खावे के आता ही नहीं है, वेजिटेरियन खाना बनाना नहीं आता। तो सबसे पहले मैंने दो दिन उनको प्यार से करने दिया, फिर मैंने कहा मैं आपको खिलाऊंगी अभी, और क्रिएटिविटी कि वो वीट नहीं खाती है तो मैं उसको सुबह, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग खिलाती हूँ प्यार से। लेकिन उनके अंदर ये कल्चर है कि यहाँ अपने रेडीमेड बना करके ढक करके आप प्रोग्राम में चले गए, वो इतनी भी तकलीफ नहीं करेंगे कि उठा करके देखेंगे क्या है, भूखा भूखा बस बनाना खा लिया, ये खा लिया, हम आएंगे, हम इतनी मेहनत से रखा है और उसने खोला भी नहीं है, और कहते मुझे बहुत भूख लगी है तो तूने ये क्या किया। बोला मैंने तो देखा ही नहीं। तो आपको क्या होता है मन में, आप विचार करो थोड़ा, थोड़ा अंश मात्र तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन बोलने का नहीं है, पालना, समझा, तो चुप, बस चुप, इतना अपने आप को कंट्रोल करना है। अभी मैं चार दिन रही ना, तो वहां तो हाथ से कोई खाता नहीं है, फॉर्क एंड नाइफ से खाते हैं, तो हम खाना सेट करके रखते हैं ऐसे बीच में बोल में, और मेरी प्लेट उसकी प्लेट, कल्चर ही ऐसा है, क्या करें, वही फॉक से खाती है, वही फॉक से लेती है। अभी आप विचार करो, वहां करेक्शन न देवे तो क्या करे। तो इतनी परीक्षा, इतनी परीक्षा, दो दिन चुप रही, फिर तीसरे दिन मैंने कहा सिस्टर आप जो खा रही हो ना, फॉक रख दिया दूसरा एक क्लीन के, इससे लो। तो कहना पड़ता है, लेकिन इतना डिटैच होकर के, जैसे बाबा कहते ना क्या, डिटैच, न्यारे और प्यारे, वो स्थिति में कहना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि आपने संकल्प किया मैं करेक्शन नहीं दूंगी इसलिए गलत में भी ना दो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों में भी हमें अटेंशन देना पड़ता है। और ऐसे करते करते हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही। मैं थोड़ा तो सर्टिफिकेट अपने आप को दे सकती हूँ कि जो संस्कार है हमारे थोड़े, तो उसमें जो विजय प्राप्त किया तो अचीवमेंट हुआ ना। और फिर वो भी ध्यान रखना है। तो ऐसे करते करते हमारी इतनी वैरायटी सेवाएं रही, बहुत अच्छी। तो ज्ञान की पालना तो सही, योग तपस्या की पालना भी, लेकिन प्यार देना वो भी एक पालना है, खाना बना के खिलाना वो भी एक पालना है। तो ऐसा, हमको तो शॉपिंग भी अपने आप करने जाना पड़ता है, तो शॉपिंग करने के लिए भी जाते, तो ऐसे ऐसे करते पालना। हम स्वाजीलैंड में थी, वहां पर एक यूरोपियन सिस्टर मॉर्निंग क्लास में 5 बजे आती है। उसका हस्बैंड फार्मर है, तो वो एक साल से रेगुलर है, वीक में 2-3 बार आती है मुरली के लिए। जब भी आती है ना, तो कुछ बाबा के घर के लिए लाती है, कभी दूध तो कभी वेजिटेबल तो कुछ भी लाती है। तो वो दिन वो बीटरूट लाई, बीटरूट आपको पता है ना, उसके गार्डन का बीटरूट, तो इतने हेल्दी बीटरूट, क्योंकि ऑर्गेनिक है, लेकिन उसके जो पत्ते थे ना वो और भी अट्रैक्टिव। बीटरूट तो ठीक, लेकिन उसके पत्ते इतने ब्यूटीफुल और हेल्दी। तो मैंने ये भाई को बोला, ये कौन लाया? बोला वो बहन लाई। मैंने कहा आप है ना, पत्तों को संभाल करके रखना, मुझे कुछ करना है। बोला बीटरूट लोग खाते हैं, पत्ता थोड़ी खाते। मैंने कहा लेकिन मैं कुछ करूंगी। हमने हमारी लौकिक मदर को सुना था, यहाँ इंडिया में तो मिलता है ना वो अरवी के पत्ते मिलते हैं ना, वो रोल करके बनाते हैं, स्टीम करते हैं, लेकिन वहां तो नहीं मिलता है, सब देशों में नहीं, कोई कोई देश में मिलता है, तो जहां मैं थी ना वहां नहीं मिलता है। तो मेरी मदर ने कहा था कि बीटरूट के पत्ते से भी बन जाता है और बहुत अच्छा बनता है। मैंने कहा इतने हेल्दी पत्ते लाओ, मैं बनाती हूँ। काट करके उसको धुलाई करके हमने बहुत प्यार से उसको बनाया और स्टीम किया, इतना सारा बना। तो एक गुजराती परिवार वहां आता है, उनको दिया मैंने चौक लगाकर। बोला बेन आप ये कहां से लाए, इंडिया से केन्या से? मैंने कहा नहीं, ये बीटरूट के पत्ते हैं। बीटरूट के पत्ते खा सकते? मैंने कहा खा सकते, उसमें क्या है? तो बहुत सरप्राइज होगी जब खाया, तो बोला ये तो बहुत अच्छा, ओरिजिनल से भी अच्छा है। अभी वो जो बहन थी ना, उसको मैंने पूछा आपका युगल नहीं है? तो बोला मेरा हस्बैंड स्पिरिचुअल नहीं है, बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो तो सुनता भी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। बोला सिस्टर आप कहां से हो? मैंने कहा देखो मेरा लौकिक जन्म जैम्बिया में हुआ, मैं बड़ी जिम्बाब्वे में हुई, और अभी इतने साल से केन्या में रह रही हूं। तो इतनी वो ऐसे हो गई। तो मैंने कहा क्यों? बोला मेरा हस्बैंड का लौकिक जन्म जैम्बिया में, पड़ा और बड़ा हुआ जिम्बाब्वे में, और रहता है स्वाजीलैंड में। मैंने कहा अच्छा। तो बोला वो तो तेरा भाई हुआ। मैंने कहा तो मैं मिल सकती हूँ? वो स्पिरिचुअल नहीं है। मैंने कहा खाली कहना तो सही। बोला ओके। शाम को उसका फोन आया कि बेन मेरे हस्बैंड को चाहिए आप हमारे घर को ब्लेसिंग करने आओ, उसको मिलना है आपको। क्यों पता है ना? सेम कंट्री के कारण। हम गए, इतना सुंदर घर, जैसे आपको लगे कोई रिट्रीट सेंटर में आ गई। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन वहां बहुत पहाड़ होते हैं, नहीं तो पहाड़ के बीच में घर बनाया है, और इतना सुंदर, इतना सुंदर। तो हम गए बैठे, वो भाई बातें करने लगा, कहाँ का है क्या है, हमारे देश की बातें और हमारे टाइम की बातें, कि कितना अच्छा हमारा चाइल्डहुड था और कितना क्वालिटी लाइफ था। बहुत बातें कर ली, हम दोनों ने बहुत बातें की, और मैं वो अरवी का पान लेके गई थी उसके लिए, और टोली गिफ्ट ब्लेसिंग, क्योंकि वो ही वाइफ लाई थी ना उसकी वो पत्ते। तो सब कुछ करने के बाद बोलता है अभी टाइम दुनिया में बहुत खराब हो गया है, नहीं? मैंने कहा हाँ। बोला हमारा चाइल्डहुड बहुत सुंदर था, अभी तो बहुत खराब है सब जगह, हमारे देशों में भी। मैंने कहा हाँ। तो अभी मेरे को चांस मिल गया ज्ञान सुनाने का। मैंने कहा पता है क्या, मैंने कहा देखो हम जब बैठे यहाँ आपके घर में, तब तो दिन था ना, उजाला था। तो बोला हाँ। मैंने कहा अभी क्या हो गया, घोर अंधेरा हो गया? बोला हाँ। किसको दोषी ठहराएंगे? बोला किसी को भी नहीं, समय टाइम इनके पास। जो टाइम बहुत अच्छा था और अभी खराब हो गया है, हम किसी को भी दोषित नहीं ठहरा सकते, कोई धर्म को, कोई पॉलिटिक्स को, कोई गवर्नमेंट को, कोई किसको ब्लेम करते हैं, लेकिन ये समय है, और समय के कनेक्शन से हमने पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान दे दिया। इतना उसको अच्छा लगा, बोला ये तो वेरी गुड। लोग तो स्पिरिचुअलिटी मतलब ये धर्म कर्म कांड क्रिया यही समझते हैं ना, वो उसको पसंद नहीं है, ये तो बहुत पसंद है। फिर ब्लेसिंग दिया, टोली दी, इतना खुश हो गया। और जब ये दिया ना अरवी का पान, ओहो दोनों इतने खुश, हाउ डिड यू मेक दिस? तो मैंने कहा जो तू पत्ते लाई ना बीटरूट का उससे बनाया है। मान नहीं सकते हैं। बोला आपने तो वेस्ट में से बेस्ट बना दिया। बोला हमारा काम ही ये है, हाँ वेस्ट में से बेस्ट बनाना ही है। दुनिया कितनी भी खराब हो उसको हमें बेस्ट बनानी है। तो इतना खुश हो गया, बोलता सिस्टर आप कब फिर आएगी? मैंने कहा देखो ये तो मैं 5 साल के बाद आई हूँ आपके देश में, अभी मेरी ऑफिस मुझे कब कहेगी मुझे पता नहीं है। बोला आई नो आपको नेक्स्ट ईयर आना ही पड़ेगा, और आप आओ और हमारे घर में आपके स्टूडेंट्स के रिट्रीट रखो, हाँ क्योंकि गेस्ट हाउस और सब कुछ है बहुत सुंदर है। तो बोला आप रिट्रीट रखो और आप हमको ये सब कराओ। मैंने कहा जरूर। तो उसकी वाइफ भी सरप्राइज हो गए कि हस्बैंड ने ऐसा कैसा रिस्पॉन्ड किया। तो ये है पालना। पालना खाली ज्ञान सुनाना नहीं है, लेकिन साथ साथ थोड़ा प्यार देना, रिस्पेक्ट करना, टोली खिलाना, थोड़ा ब्राह्मणों का खाना खिलाना, ये सब पालना में आ जाता है। मैं कहूं नहीं मैं तो बहुत इंचार्ज हूं, बड़ी हूं, मैं क्यों ये बैठ करके बनाऊं? नहीं, सिंपलेस्ट काम भी हमें करना है। और नेचुरली बाबा हमेशा कहता था भाषण भी करो और वासन भी करो, बर्तन भी करो। तो ये हम लकी है, हमारे फील्ड में हमको सब कुछ करने का चांस मिलता है। तो ये है थोड़ा सेवा समाचार और ज्ञान और धारणा की बातें। ओम शांति। मैं समझती हूँ सब हमको जानते तो है, शरीर का नाम प्रतिभा है। लौकिक और अलौकिक जन्म अफ्रीका में, मुझे 43 इयर्स हो गए ज्ञान में, बहुत छोटेपन से स्कूल में पढ़ते पढ़ते आ गए। हमारा लौकिक परिवार और चाचा निमित्त थे अफ्रीका में सेवा शुरू करने के, तो नेचुरली हमको भी जीवन बन गया हमारा भी, और मेरे सेवा भी अफ्रीका में ही देती हूँ। और अभी चांस मिल गया है मधुबन साल में 2 बार आना और 2-2 मास सेवा देना। अभी अक्टूबर में हमको 2 मास मिलता है सेवा का, और फरवरी में 1 मास मिलता है, 1.5 मास, लेकिन ये भी हमारा चांस है। ओम शांति। रियली भक्ति बेर और हमारे ज्ञानेश्वर भाई, डेफिनेटली डेफिनेटली वो तो है। ओम शांति। हाँ कौन भाई? आप जानते हो हसु भाई दावड़ा? हाँ हसु भाई, उसका जोश बहुत है ना। हाँ हसु भाई, हाँ वो आ गया, वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है लेकिन समय पर आकर के खड़ा रहता है, तो मतलब उसका दिल इतना क्लीन है ना, क्लीन, तो बुद्धि भी इतनी क्लियर कि बाबा ऐसो को टच करता है, ड्रामा ऐसो को इंस्ट्रूमेंट बनाता है। निमित वो थोड़ी रेगुलर मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट नहीं है, था एक बार लेकिन अभी नहीं है क्योंकि बहुत दूर रहता है, लेकिन फिर भी देखो उसको बाबा कैसे यूज करता है।